खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद खुदा जिसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और जिसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। यसाया नबी से कहता है कि क्योंकि हमारी ही बदकारी के बायस हमारे दरमियान और खुदा के दरमियान जुदाई है। सो इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सीखना शुरू करें, चंद लम्हों की खामोशी में किसी तरह का आपका बोझ है, किसी तरह की आपकी फिक्र है, किसी तरह की आपकी सोच, आपका ख्याल, आपकी परेशानी, आपका दुख, ख्वाह वो माली है, ख्वाह वो रूहानी है, ख्वाह वो शैतानी तस्वीरों के ख्वाब हैं, उन सब सोचों को, उन सब बातों को जो हमें परेशान करती है, इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पे उन ढेल देंगे, डाल देंगे और कहेंगे कि खुदावंद तूने कहा है कि अपना बोझ मुझे दो तो मैं तुझे अपना आराम दूंगा। सो इस बात को याद रखते हुए खुदावंद के हजूर झुकेंगे, खामोशी में अपनी अपनी शख्सी हालत का जायजा लेंगे, अपनी अपनी जांच पड़ताल करेंगे। हमारी सोच हमारे घर की तरफ तो नहीं, हमारी सोच किसी और बात की तरफ तो नहीं, हमारी सोच किसी तरह की मुश्किल अबलीस के किसी तरह के झूठों में मुबतला तो नहीं। सो चंद लम्हों की खामोशी में झुकेंगे और कहेंगे कि खुदा पाक और हमारी रहनुमाई कर। खुदा बाप, हम तेरे फजल के तख्त के पास बड़ी दलेरी के साथ हाजिर होते हैं और तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने लोगों को जो तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं मुकद्दस लोग ठहराया है, एक ऐसी अनोखी उम्दा कौम ठहराया है जो बयान से बाहर है, जो खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं। सो खुदा बाप, आज इस वक्त तेरा कलाम जो हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है हमारे बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाए और हर तरह की सोचों और ख्यालों को खुदावंद खुदा दुरुस्त करे, क्योंकि तेरा कलाम जो तेरा लहाम है हमारी तरबियत और नसीहत के लिए दिया गया है ताकि हम मर्दे खुदा बेटी और बेटा तेरी पहचान में तेरे साथ शख्सी रिश्ता में ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने। सो आज के कलाम के हिस्सा को ले और खुदावंद मुझ खाक सिर को अपने लोगों की रहनुमाई के लिए पाक रूप की कुदरत में इस्तेमाल कर ताकि हम सब कुछ ना कुछ आज सीखने वाले बने, क्योंकि तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता, तेरा कलाम तेरी मर्जी को पूरा करता है। सो हम सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम खुदावंद के बंदा पालूस की जिंदगी में सीख रहे हैं, हमने पिछले हफ्ते में देखा था कि पालूस की जिंदगी के जीने का मकसद, उसकी जिंदगी की बुनियाद क्या थी। पालूस की जिंदगी को जब हम देखते हैं दुखों से पुर जिंदगी है, पालूस की जिंदगी को देखते हैं तो वो लोगों के लिए, फरिश्तों के लिए, दुनिया के लिए तमाशा बना हुआ नजर आता है। पालूस की जिंदगी में हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो इन सब दुखों, सब मुसीबतों, सब तकलीफों, सब तरह की उन बातों का सामना करता है जो कि कोई भी पसंद नहीं करता। अगर आप में से किसी के ऊपर लानत की जाए तो आप उसके जवाब में किसी पर दो दफा लानत करेंगे। अगर आपके कोई एक चांटा मारे तो आप उसके दो या तीन मारने के लिए तैयार होंगे। सो हम उस खुदावंद के सूरमा की जिंदगी का मुतालिया कर रहे हैं जो के हमारी रूहानी जिंदगी के लिए मिसाल है, और वो मिसाल इसलिए बना क्योंकि उसने यीशु मसीह की जिंदगी को अपनाया। उसके जीने का मकसद, उसकी मिसाल क्या थी, यीशु मसीह उसकी मिसाल थी। जैसा कि आज हमारे दौर में नौजवानों के लिए बहुत से अदाकार उनके दिल पसंद हीरो हैं, बहनों के लिए बहुत सी एक्ट्रा जो के फिल्मी अदाकार हैं उनकी दिल पसंद हीरो हैं, जैसे वो सवारती हैं, बनती हैं, जैसे वो बोलती हैं, कपड़े पहनती हैं, हम उनकी क्या करना शुरू करते हैं, कॉपी करना शुरू करते हैं। पालूस ने इन तमाम दुखों को, तमाम तकलीफों को, तमाम मुसीबतों को, उन तमाम लान तान को, उन सारी गाली को, उस सारे मारे जाने को, सारे सताए जाने को इसलिए कबूल किया कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने लिए नमूना जाना। आज हम सीखेंगे कि हम यीशु मसीह में ना कि सिर्फ मुझे पादरी की हैसियत से ये हक हासिल है कि मैं ही मसीह के लिए जिंदगी गुजारूं, हम सब बेटी बेटा बुजुर्ग बच्चा छोटा बड़ा सफेद काला जैसा भी है, हम यीशु मसीह में इस दुनिया के लिए मिसाल हैं। हम इस दुनिया में यीशु मसीह में उसकी कुदरत में फरिश्तों के लिए सीखने का सबब हैं। हमसे ना दुनिया ही, ना हमारे बच्चे, हमारे अजीज, हमारे पड़ोसी ही नहीं सीखते, आसमान के फरिश्ते हमसे सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा की परस्तिश की है उसकी हजूरी में, उन्होंने खुदा की हजूरी का वो तजर्बा हासिल किया है जो कभी किसी फर्दे बशर ने हासिल नहीं किया। हम इसलिए उनके लिए सबक हैं, इसलिए उनके लिए बहुत उम्दा मिसाल है, क्योंकि हम अनदेखे खुदा पर यकीन करते हैं, उस खुदा पर जो इस जमीन पर इंसान बना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने कॉल के मुताबिक खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और आप में से हर एक के लिए वो दुआ कर रहा है। दिन रात वो आपकी शिफायत करता है, दिन रात वो खुदा के हजूर आपकी वकालत करता है। आप में से बहुत से लोगों ने अदालतों को देखा होगा कि जज के सामने जब कोई मुजरम पेश किया जाता है तो वकील उसको बचाने के लिए, वकील उसकी सजा को कम कराने के लिए, वकील उसकी रहाई के लिए क्या करता है, उसकी क्या करता है, उसकी वकालत करता है, उसके लिए बोलता है। ऐसे ही यीशु मसीह अपने तख्त पर बैठा हुआ हम सब की वकालत करता है, हम सब के लिए दुआ करता है, हम सब के लिए शिफायत करता है। आज हम उस शख्सियत के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं कि पालूस की जिंदगी का फखर, उसके जीने की बुनियाद क्या थी, इस दुनिया का जोर, इस दुनिया का रुपया पैसा, इस दुनिया की इज्जत शोहरत जमीन जायदाद नहीं थी, बल्कि खुदा का वो फजल था जिसके बायस आज हम जिंदा हैं। ये खुदा का फजल ही है कि हम आज सांस ले रहे हैं, ये खुदा का फजल ही है कि हमारे तन पर पाने के लिए कपड़े हैं, ये खुदा का फजल ही है कि हमारे सर पर रहने के लिए छत है, ये खुदा का फजल ही है कि हम चल फिर सकते हैं, ये खुदा का फजल ही है कि हम तंदुरुस्त हैं, ये खुदा का फजल ही है अगर आज आप बीमारी में हैं, अगर आज आप मुश्किलों के तूफान में हैं, अगर आज किसी तरह की मुसीबत में हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही उम्दा मकाम है कि आप मसीह में अगर किसी दुख से गुजर रहे हैं तो, क्योंकि उसकी बहुत ही अहमियत है। आज हम सीखेंगे खुदावंद के बंदा पालूस की जिंदगी का भरोसा, पालूस की जिंदगी का जीने का मकसद, जैसे हमने पिछले दिनों में सीखा उसके जिंदगी का फखर क्या था खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर, क्योंकि खुदा ने दुनिया के हकीमों को, दुनिया के हिकमत वालों को, दुनिया के इलम वालों को, दानिशमंदों को, सबको क्या ठहरा दिया, बेवाकूफ और कमजोरों को चुन लिया, और ये खुदा का फजल है। पालूस की जिंदगी का फखर यह था कि वो यीशु मसीह की खुशखबरी पर फखर करता था, और खुशखबरी ये है कि जो कोई भी यीशु पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता सिवाय यीशु मसीह के, सिवा खुदा के वो कहता है कि मुझ पर ईमान रखो तो मैं तुमको अबदी जिंदगी दूंगा। सो ये पालूस की जिंदगी का फखर था। पालूस बनी हुई चीजों पर फखर नहीं करता था, जिसमें बुत प्रस्ती है, जिसमें वो जबूर नवीस बयान करता है, ना वो बोलते हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना वो हिलते हैं। और जबूर 115 कहता है कि जो कोई उनकी प्रस्तुति करता है वो उन्हीं की मानद हो जाएगा। पालूस का और आपका मेरा जिंदा खुदा है, जो बोलता है, जो सुनता है, जो आपके दर्द को, आपकी मुश्किल को, आपके आंसुओं को याद रखता है। खुदा जो कुल इलम रखता है, जबूर नवीस के मुताबिक जबूर नवीस कहता है कि वो आपके रुस्कार से हर एक गिरने वाले आंसू को, हर उस बूंद को वो याद रखता है। ये हमारा खुदा है, हमारा खुदा मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा खुदा है। आज बहुत से आप में से हो सकता है बीमारी में मुब्तला हैं, माली हालात से दो चार हैं, बच्चों का दुख है, बेटियों की नाफरमानी का दुख है, हम बहुत सी नशावारों चीजों के दुख में हैं, बहुत सी दूसरी बातों की फिक्रों में, परेशानियों के दुख में हैं। याद रखें, वो खुदा हर एक सोच से, आपके हर एक गिरने वाले आंसू से वाकिफ है। सो पालूस का फख्र उस जिंदा खुदा पर है। और हमने देखा कि पालूस कहता है कि खुदा ना करे कि मैं दुनिया की किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर। और हमने यर्मिया नबी के बारे में देखा था, ये याद दहानी के तौर पर हम बात कर रहे हैं जो हमने पिछले ही हफ्ते सीखा था। यर्मिया कहता है कि जो कोई फख्र करे इस बात पर, फख्र करे इस बात पर उसका 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 यकीन, उसका एतमाद, उसका भरोसा होना चाहिए कि वो जिंदा खुदावन खुदा को जानता है। बेटी कैरी राम से बैठ जाओ। कि वो खुदावन खुदा को जानता है। आप अजीम लोग हैं, इस दुनिया के कितने भी अमीर इकट्ठे कर ले, दौलतमंद इकट्ठे कर ले, जागीरदार इकट्ठे कर ले, सरमायादार इकट्ठे कर ले, हिकमत और दनाई रखने वाले लोग इकट्ठे कर ले, जो इत्मीनान, जो कुदरत, जो ताकत आप मसीही ईमानदारों को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है और ना ही कभी होगी। क्या हम इस बात का यकीन करते हैं? क्या हम इस हकीकत की बुनियाद पर जीते हैं? जब दुख या तकलीफ आती है, क्या हम ये कहते हैं कि खुदा तू हमारे साथ है, तूने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अब से अब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, उसने तो यहां तक वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी भी यतीम और तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वो हमारे अंदर रहता है। सो आज हम सीखेंगे आगे बढ़ते हुए कि खुदा के फजल का मतलब क्या है। अगर उसका कोई हमसे पूछे, उसका लफ्जी बयान हम किस तरह कर सकते हैं, उसकी तफसीर, उसकी तशरी, उसकी वजाहत हम किस तरह कर सकते हैं, उसकी तारीफ किस तरह बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पड़ोसियों में से कोई बहन, कोई भाई, हमारा बेटा जो अच्छा काम करता है, वक्त पर स्कूल जाता है, हमारी फरमाबरदारी करता है, जो कुछ भी वो करता है, तो अगर कोई हमसे पूछे कि आपका बेटा कैसा है, तो हम उसकी तारीफ के क्या करेंगे, बहुत से अल्फाजों में बयान करेंगे। मेरा बेटा बहुत नेक है, मेरा बेटा बहुत ही फरमाबरदार है, मेरा बेटा काम करता है, ये करता है, वो करता है। ये मतलब सिखाने का है कि हम खुदा के फजल की तारीफ किस तरह बयान कर सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे, अगर कोई ना पूछे, हम खुदा के फजल की वजाहत किस तरह अपने दिल में रखते हैं, अपने सोच में रखते हैं, हमारे लिए खुदा के फजल का मतलब क्या है? क्या लफ्जों में से एक लफ्ज है जहां फिर हम हकीकी तौर पर उसके मायने उसका मतलब जानते हैं? खुदा के फजल का मतलब है यानी कि जिस चीज के जिस मोहब्बत के, जिस शफकत के, जिस रहम के और उस बड़े हक के हम हकदार नहीं, खुदा हमें बख्शिश के तौर पर देता है। ये खुदा का फजल है कि जिसका कोई हकदार नहीं, खुदा उनको उन्हें तोहफे के तौर पर देता है। और ये आसमानी बाप की तरफ से नस्ल इंसानियत के लिए खुदा की नेमत है, खुदा का करम है, खुदा की शफकत है, खुदा का अल्लाही प्यार है, खुदा की माफी है। और पालूस रसूल इसी बारे में बात करता है। मेरे साथ निकालें जो हवाला हम सीख रहे हैं, इफिसियों 3:3, उसकी पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। और यहां पर पालूस कहता है, इफिसियों 3:3 उसकी पहली आयत से पालूस कहता है, इसी सबब से मैं पालूस, जो तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यसू का कैदी हूं। आपने इसके बारे में सीखा कि जब पालूस रसूल इस खत को लिख रहा था, वो फूलों की सेज पर बैठा हुआ नहीं था, वो कहीं समंदर के किनारे बैठा हुआ नारियल पानी नहीं पी रहा था, वो अपने घर में बैठा कोई टीवी प्रोग्राम नहीं देख रहा था। वो जब इस खत को लिख रहा था, वो कैद में था और उस पर दिन रात सिपाहियों का पहरा रहता था, और वो मसीह के लिए कैदी था। क्योंकि वजह क्या थी, सबब क्या था, किस लिए वो इस कैदखाना में था? क्योंकि मसीह की खुशखबरी को फैलाना, मसीह के लिए जिंदगी उसका बसर करने का मकसद ये था, यीशु मसीह के बारे में बयान करना। और दूसरी आयत में कहता है, शायद तुम खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ। पालूस रसूल अपने आप को कहता है कि गुनाहगारों में से सबसे बड़ा गुनाहगार मैं। कलीसिया को सताने में वो सबसे ज्यादा सरगर्म था, लोगों को यीशु मसीह के लिए घसीटने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, उनको बुरा भला कहने के लिए, उनके कत्ल तक वो राजी था। और वो कहता है कि मैं जो मौत का, दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं मौत का और सजा का हकदार था, ये खुदा का फजल मुझ पर इसलिए हुआ क्योंकि मैं इस लायक नहीं था, मैं इसका हकदार नहीं था। ये खुदा का करम है, ये खुदा की रहमत है कि उसने मुझ बड़े गुनाहगार को चुना के गैर कौमों के लिए यीशु मसीह की मनादी करने वाला बनो। आप और मैं कोई ज्यादा आलम नहीं है, आप और मैं कोई बादशाह के घराने से नहीं है, आप और मैं पाक नहीं है, आप और मैं बहुत ज्यादा हकीम नहीं है, हमारी कोई बहुत जमीन और जायदाद नहीं कि किस पर हम फक्र करें। हम इस दुनिया के ठुकराए हुए, दुनिया के हकीर और दुनिया के बेवजूद लोगों में गिने जाते हैं जो कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और ये किस लिए है? खुदा का फजल, जिसके हम हकदार नहीं थे, कि उसने अपना फजल जाहिर किया कि जब हम गुनाहगार थे अपने बेटे को भेजा कि हम निजात पाएं। ये पालूस की जिंदगी का फखर था। और आज हम किन चीजों पर फखर कर रहे हैं? हमें जिंदा खुदा पर फख्र करने की जरूरत है, हमें अपनी कमजोरियों में उसे पुकारने की जरूरत है। मेरे साथ देखें पालूस रसूल क्या करता नजर आता है। दूसरा करंथियों उसका 12:3 उसकी 3 में देखेंगे। अगर पालूस इन दुखों से गुजर सकता है, इन बातों, इन हालातों में ये बात कह सकता है, तो हम भी कह सकते हैं, क्योंकि वही कुदरत जो पालूस के अंदर सुकूनत करती थी हमारे अंदर भी सुकूनत करती है। दूसरा करंथियों 12 बाब उसकी 3 आयत, माजर चाहता हूं उसकी 9वीं आयत। यहां पर हम देखते हैं पालूस रसूल जो के रोया देख रहा है, उसे बहुत बड़ा मकाशवा खुदावन की तरफ से हासिल हुआ। वो तीसरे आसमान पर उठाया गया और पालूस रसूल रूहानी तौर पर इतनी ज्यादा तरक्की के रूज पर था कि अबलीस ने उसके लिए चंद एक बदरूहें क्या की, मुकरर की के पालूस को सताएं। आप जब भी रूहानी तरक्की के दौर में होंगे, आप जब भी मसीह की पहचान में बढ़ते होंगे, आपका जब भी खुदा के साथ तल्लक ज्यादा होगा, आप अपने गिर्द मुश्किलात को, आप अपने गिर्द बुरी सोचों को, आप अपने गिर्द बहुत सी आजमाइशों की मौजूदगी देखेंगे और आप जान सकते हैं कि आप खुदावंद की पहचान और उसके जलाल में बढ़ रहे हैं। और पालूस यहां पर खुदा से 3 दफा दरख्वास्त करता है कि इस दर्द को मुझसे दूर कर, जो मेरे बदन में है, जो मेरे बदन में कांटे झपोए जाते हैं, इसे दूर कर। तो खुदावंद उसे जवाब में क्या कहता है, मगर उसने मुझसे कहा, यानी मगर खुदा ने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। पास पालूस कहता है, पास मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। आज कितने हैं जो अपनी कमजोरी पर फख्र करते हैं? मैं अपनी कमजोरियों पर फख्र करता हूं, क्योंकि बहुत दफा मैं बोलने में लाचार हूं, तालीम के लिहाज से मुझे कोई इल्म हासिल नहीं है, बहुत सी दूसरी जिस्मानी कमजोरियां हैं जिन पर मैं फख्र करता हूं। हमें अपनी कमजोरियों में फख्र करने की जरूरत है, क्योंकि हम जो कुछ हैं इसलिए हैं क्योंकि खुदा के फजल से हैं। हो सकता है आप अपनी तालीम के वजह से कमजोर पड़ते हैं और आप उसमें फख्र करने की बजाय खुदा पर बुड़बुड़ाते हैं कि मैं क्यों ऐसी हूं, मैं क्यों ऐसा हूं, मैं क्यों बोल नहीं सकती, मैं क्यों ऐसे चल नहीं सकता, क्यों मुझमें ये अदा नहीं पाई जाती, क्यों मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकता। आपके बहुत से सवाल हो सकते हैं। पालूस रसूल यहां पर कहता है उसने 3 दफा दरख्वास्त की, लेकिन खुदा ने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, तू इस काबिल है कि इस दुख में से गुजरे। हमें भी ऐसा नमूना पालूस से सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब हम मुश्किल में, जब हम आजमाइशों में, जब हम तकलीफों में, दुखों में, बीमारियां में होते हैं, तो हम खुदा से दुआ करते हैं। अगर उसका जवाब ना मिले तो फिर हम खुदा पर बुड़बुड़ा कर, खुदा को लामा देकर क्या करते हैं, बाबों, पीरों, छाबों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, अपनी बहाली के लिए, अपनी सेहतियाबी के लिए। ये वो वक्त होता है जब खुदा चाहता है कि हम सिर्फ उस पर भरोसा करें, क्योंकि वो हर वक्त हमारे नजदीक है, वो हमारे अंदर है। और जब आप इन हालात में खुदा पर यकीन करते हैं तो खुदा के आसमान के फरिश्ते, तमाम बदरूहें, तमाम इर्द गिर्द के लोग, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे आपसे सीखते हैं, भला आप समझें या ना देखें। अनदेखी पोशीदा ताकतें हमें देखती हैं और कहती हैं कि वाह, कैसा अजीम ईमान है इस बहन का, के दुख में कहती है कि खुदावन तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। जब ये अल्फाज खुदा के बेटे और बेटियों के मुंह से शैतानी और रूहानी आलम के लोग सुनते हैं तो वो हैरान होते हैं, क्योंकि हमें खुदा ने बहुत ही अफजल दर्जा दिया है। और खुदा ने क्या कहा है, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाएं। आपने कभी भी यीशु मसीह को नहीं देखा, आपने कभी भी यीशु मसीह या खुदा को नहीं देखा, کس لیے؟ ایمان کے باعث آپ زندگی گزارے ہیں، اس لیے آپ عمدہ انوکھے لوگ ہو۔ یہ بائبل کی سب باتیں ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میرے اپنے الفاظ نہیں کہ آپ کو خوش کروں، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہوں کہ آپ عمدہ لوگ ہوں۔ میرے ساتھ دیکھیں کہ بائبل کہتی ہے کہ کیا تم اپنی حیثیت کو مسیح یسوع میں نہیں جانتے؟ ہمارا مقام، ہماری حالت، ہمارا درجہ، ہماری حقیقت، ہمارا اعلی مقام یسوع مسیح میں ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں 4:16 میں ہمیں لکھا خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں خدا کے فضل پر تخت جانے کا، خدا کے تخت کے سامنے اس کے فضل کے باعث یہ قدرت حاصل ہے کہ ہم اس کے تخت کے سامنے حاضر ہو سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں بجائے کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں تھا، صرف کاہن کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ خدا کے تخت کے سامنے اس کی حضوری میں حاضر ہو۔ آپ میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے۔ عبرانیوں 4:16 کے مطابق، پہلا پترس 2:9 کے مطابق، آپ خدا کے خاص اور عظیم لوگ اور اس کی عمدہ ملکیت، اس کے خون خریدے لوگ ہو۔ میرے ساتھ اس حوالہ کو دیکھیں، پہلا پترس 2:9 میں خداوند کا بندہ پترس اس سچ کو بیان کرتا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ اس کی خوبیاں ہم کس طرح ظاہر کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم سوچیں یا نہ سوچیں، اگر ہم برے الفاظ کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ مسیحی ہے، اگر ہم فضول قسمیں اٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ کیا یہ مسیحی ہیں۔ اس لیے ہم خدا کی عظیم قوم ہیں، ہمیں خدا کی خوبیوں کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر افسیوں 2:19 کے مطابق، ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، اس کے پاک، اس کے بے عیب کیے ہوئے لوگ، اس کے مقدس لوگ جو آسمان کے حقدار ہیں۔ یہ سب باتیں بائبل میں لکھی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ کیوں ہم ان باتوں پر یقین نہیں کرتے؟ کیوں ہم بار بار اپنی حالت کو بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ میں اکثر جب سوچتا ہوں مسیحیوں کے بارے میں تو دو باتیں، بہت اہم باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ مسیحی اس دنیا میں ایسے عظیم لوگ ہیں، ایسی قوم ہیں جن کا بیان بیان سے باہر ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں اور خدا کے ان کے اندر ہیں۔ پہلی بات کہ مسیحی عظیم لوگ ہیں۔ دوسری بات، جب مسیحی اعتبار نہیں کرتے، جب مسیحی خدا کی دی ہوئی نعمتوں، برکتوں کو، ان وعدوں پر کیا کرتے، ان کے مالک نہیں بنتے، اس کو اپناتے نہیں، تو دنیا کے سب سے بد قسمت لوگ مسیحی ہیں اس دنیا میں۔ جب ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے تو ہم جیسے دلہن شگار کے بغیر ویران نظر آتی ہے، جیسے کھیت سبزی کے بغیر اجڑا ہوا نظر آتا ہے، جیسے اگر دنیا میں درخت اور پھول نہ ہو تو دنیا بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی ہے، ویسی ہی ہماری حالت ہوتی ہے جب ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ سو دو باتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مسیحی دنیا کے عمدہ لوگ ہیں جب وہ یقین اور خدا کے وعدوں میں زندگی گزارتے ہیں، اور اگر وہ خدا کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتے تو سب سے بد قسمت، سب سے حقیر، اور کن لفظوں میں بیان کروں، آپ خدا کی عمدہ قوم ہو۔ کیا آپ یقین کرتے ہیں؟ अपने आप से कहने की जरूरत है जब दुख तकलीफ आए, खुदावन तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। जब आपको अबलीस या कोई और नीचा करे, जब आप सोचे कि हम सिर्फ इसीलिए पैदा हुए हैं कि झाड़ू फेरना है और बात खत्म, हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि हमने सिर्फ कूड़ा किरकट ही इकट्ठा करना है और अपने बच्चों को भी इसी के बारे में तालीम देनी है, बस खस्मा को खाएं बच्चे और उनकी पढ़ाई, तो इन बातों को याद रखने की जरूरत है। वो खुदा जिस पर आपका भरोसा है वो आसमान खोलकर मन बरसाता है, वो खुदा जिस पर आपका भरोसा है वो दरियाए कुलजम का सीना खोलकर अपने लोगों को जिंदा सलामत मिस्र की फौजों से बचाने की कुदरत रखता है। वही खुदा है जिसका हाथ छोटा नहीं हो गया, जिसके बारे में आप गा रहे थे आ यसू जी मिनु लोर तेरी, उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं यानी कि वो बहरा नहीं कि सुन ना सके। ये हम ही हैं जो उसकी नहीं सुनते, और ये कब होता है? जब हम उसकी तरफ से अपना मुंह फेर कर दुनिया की तरफ फिरते हैं, तब हम इस दुनिया के सबसे हकीर और बदकिस्मत लोग बनते हैं। अगर हम उस पर यकीन करते हैं तो इस बात को याद रखें, बाइबल कहती है तुम बरगजीदा नस्ल शाही काहिनों का यानी के बादशाहों के बादशाह के बेटे और बेटियां हैं, एक मुकद्दस कौम, एक ऐसी उम्मत जो खुदा की उम्मत है। और यहां पर ही खुदा का कलाम नहीं रुक जाता, इफ़सियों 5 उसकी 8वीं और 9वीं आयत में हम इस दुनिया में नूर हैं, हमें नूर के फर्जंदों की तरह चलने की जरूरत है। इफ़सियों 5:8-9 में इसी तरह पहला करंथियों 6 उसकी 19वीं और 20वीं आयत में पालूस बार बार कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, यानी कि खुदा का घर, खुदा के रहने की जगह। हम बहुत दफा इस हकीकत को भूल जाते हैं। आपसे गुजारिश है जब भी कोई आजमाइश, तकलीफ, मुसीबत, दुख, परेशानी, किसी तरह की फिक्र आए, इंसान का हाथ आपको रहाई नहीं दे सकता, किसी बाबे का, किसी बुत प्रस्ती की तस्वीर का हाथ आपको रहाई नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा का। इसका तजर्बा करके देख लें, और इसकी जिंदा मिसाल आपके सामने आज बोल रही है। मैंने कोई इल्म नहीं हासिल किया या मेरे पास कोई ऐसी जायदाद नहीं, जब खुदा अपना हाथ बढ़ाता है, जैसे वो पतरस को तूफानों में से निकालने की कुदरत रखता है, जैसे मिस्र को मिस्र की उन सारी तस्वीरों, बीमारियों और सारी लानतों से बनी इसराइल कौम को निकालने की कुदरत रखता है, वो आपके लिए आज भी यकसा है, क्योंकि कलाम कहता है खुदावंद आज कल बल्कि अब तक यकसा है, वो बदल नहीं सकता, क्योंकि खुदा इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले। हम यीशु मसीह में इस दुनिया के लिए मिसाल हैं, इस दुनिया के लिए नूर हैं, इस दुनिया में मसीह यीशु की नुमाइंदगी करने वाले हैं। एक और हवाला देखेंगे और इस पर खत्म करेंगे, और इस हवाला को हम अगले इतवार सीखेंगे। दूसरा करंथियों 3:3 आयत था, पालूस कहता है करंथस की कलीसिया को, जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। आप मसीह का खत हैं, जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ आप करते हैं, कैसे आप जिंदगी गुजारते हैं, लोग आपसे सीखते हैं। आज हम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? खत का मतलब है कि जाहिर करना कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। जब खत आता है तो हम पढ़ते हैं कि हमारे मामू जान ने लिखा, उनका हाल क्या है, वो उनकी सेहत क्या है। ایسے ہی خدا پاک روح ہمیں دیا گیا ہے، اور جو کچھ ہمارے دل کی تختیوں پر لکھا گیا ہے وہ جب ہم بولتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں، جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو لوگ اسے پڑھتے ہیں۔ پالوس کہتا ہے تم مسیح کا وہ خط ہو، سب آدمی اسے جانتے اور پڑھتے ہیں۔ آج ہم کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی نمائندگی کریں، آئے ہم خداوند کے حضور جھکیں، کیونکہ ہم اپنے لیے نہیں جی سکتے بلکہ مسیح کے لیے جینا چاہیے ہمیں۔ ہمیں اپنی خودی کی ان تمام خواہشوں کا انکار کر کے خداون سے قوت طاقت مانگنے کی ضرورت ہے۔ خدا باپ، آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں یہ بھروسہ، یہ یقین کرنے کی قوت دے کہ یہ جو باتیں تو نے لکھی ہیں یہ سچ ہیں۔ کمی کمزوری ہے تو صرف ہم میں ہے کہ ہم اسے بھول جاتے ہیں، سو ہمیں حکمت اور دنائی دے کہ ان باتوں پر یقین کریں جو کہ تیرا کلام ہے۔ سب کو بڑی برکت دے، کلیسیا کی روحانی صحت کے لیے، کلیسیا کی مالی ضروریات کے لیے، کلیسیا میں جو بھی بہن بھائی، بزرگ، بچہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، خدا باپ یہ نہیں کہ ان کو رہائی دے بلکہ ان کو قدرت دے، تاکہ خداوند اس ساری بیماری میں وہ کہیں کہ تیرا فضل ہی خداوند ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ ہماری کمزوریوں میں تیرا زور پورا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں سب کو بڑی برکت دے، آمین۔